क्लास में रेगुलर आ रही हैं। शीलू बहन अपने बचपन से ही साकार बाबा के समय से ही आप इस मार्ग में चल रही हैं। बहुत अच्छे आपके पास अनुभव हैं, पढ़ाई भी आपने बहुत अच्छी की है और एजुकेशन विंग की तरफ से आप मधुबन की तरफ से कोऑर्डिनेट करते हैं। और साथ साथ जब भी हमारी पहली ट्रेनिंग हुई थी, बाप दादा अव्यक्त हुए और जब अप्रैल मई में फर्स्ट ट्रेनिंग रखा था जिसमें शीलू बहन मुनी बहन हम लोग थे, जिसमें स्वयं मुझे शकू बहन को भी गोल्डन चांस मिला 69 में, और तब से लेकर के हम समर्पित जीवन में चल रहे हैं जिसको आज 44 वर्ष हो गए हैं। तो तब से लेकर के और शीलू बहन का भारत के साथ साथ सब तरफ विदेशों में जाना होता है, लगभग प्रतिवर्ष कहाँ न कहाँ आपका जाना होता है और भारत में भी सब जगह पर अलग अलग कार्यक्रम में आपको विशेष निमंत्रण मिलता है। बाबा ने आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं भरी है, गुण भरे हैं, तो उन सभी कलाओं का उपयोग बाबा की सेवा में बहुत अच्छी तरह से शीलू बहन कर रहे हैं। तो अभी हम सबके बीच में शीलू बहन का क्लास रहेगा और तत्पश्चात थोड़ा सा ब्रेक रहेगा। ब्रेक में जैसे कल आप सभी गए थे वैसे आपको जाके तुरंत आना है 10 मिनट के अंदर। और एक डायरेक्शन अभी दे देती हूँ, शीलू बहन नहीं आए हैं तो जब भी अपना 12:30 बजे पूरा होगा तो भोजन के लिए सिर्फ 100 व्यक्ति ही जा सकते हैं, तो हम पहले भाइयों को भेजेंगे और गिनती से भेजेंगे और बाकी सब बहनें ध्यान दें, किसी को भी नीचे नहीं उतरना है, सब यहाँ बैठी रहेगी, पीछे की बहनें भी बाद में आगे आ जाएगी। और आधा घंटा डोंडैचा की जो लीला बहन है उनका क्लास रहेगा ताकि तब तक भाइयों का भोजन भी हो जाएगा। तो इसीलिए बहनों को इस बात का ध्यान रहे कि कोई भी बहन डायरेक्ट पूरा होने के बाद चली न जाए भोजन करने के लिए, ठीक है? तो वो आपके ध्यान पे रहे। ओम शांति। समाचार मुंबई वालों को दे रही हूँ, कईयों को पता चला होगा कईयों को नहीं, क्योंकि वहाँ जब से हम निकले हैं लगातार बारिश बारिश बारिश, सब रोड भर गए, सब कुछ आधा आधा गाड़ियाँ भर गई और आज फ्लाइट्स बंद हो गई है, ट्रेनें बंद हो गई है, वहाँ सब कुछ बंद हो गया है। और आप देखो मजे से बाबा की गोद में, बाबा की छत्र छाया में है, कोई चिंता कि जाना है ट्रेन पकड़ना है कुछ भी नहीं। तो वहाँ पर बहुत जो है बारिश जोर शोर से चल रही है।
ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगी, 15 मिनट लेट हो गई, क्योंकि जैसे बाहर निकली आप सोच सकते हैं, इतने स्टेशन आते हैं, अभी अभी वो नरसिम्हा राव जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी बेटी आई हुई है सोशल विंग के प्रोग्राम में। कल उसने उद्घाटन में अपना चीफ गेस्ट थी सोशल विंग में, तो आज उसने, हम ज्ञान सरोवर में थे तो आज हमारा अभी लेक्चर सुना उन्होंने, तो वो भी बहुत बड़ी प्रोफेसर है। जैसे नरसिम्हा राव बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उनकी बेटी हैदराबाद से आई। अब मैं सोचूं मैं जाऊं फिर कुछ बोले निकलना मुश्किल था, फिर भी मैं उनसे छुट्टी लेकर के आई। मैंने कहा नहीं मुझे जाना है, तो खास आई थी 2 दिन के लिए, क्योंकि बाबा के घर में दूर दूर से लोग आते हैं, तो जब पांडव भवन में आते हैं तो हर एक टीचर समझती है कि मिले, तो आप सबसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। रोज तो आपको देखते ही रहते हैं, सवेरे मुरली में भी कल मिले थे, परसों भी नहीं आज भी नहीं, क्योंकि ज्ञान सरोवर में भी प्रोग्राम चलते हैं, फिर शांतिवन में भी प्रोग्राम चलते हैं, तो कभी नीचे कभी ऊपर। बाबा ने हमें तीन लोक दे दिए। हम कहते हैं हमारे 3 लोक कौन से हैं, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन। तो कई भाई बहने पूछते हैं आज आपका क्या प्रोग्राम है, तो मुझे सोचना पड़ता है ज्ञान सरोवर जाना है, शांतिवन जाना है, पांडव भवन में रहना है, क्योंकि सेवा है जो बाबा सेवा देते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये भी कितना बड़ा भाग्य है। जब मैं शुरू में मधुबन में रहना शुरू किया, विदेश से आई थी और दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा, तो सब मुझे यही याद दिलाए आप कितनी भाग्यशाली हो, कितनी भाग्यशाली हो, आप मधुबन में रह रही हो, कितनी भाग्यशाली हो। तो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ ये मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं थी, लोग मुझे याद करा रहे थे कि आप कितनी भाग्यशाली हो। और फिर जब आप जैसे भाई बहने आते हैं, तो परसों से मैं आप लोगों के मुख से सुना, कितने लकी है मधुबन में भट्टी करने को मिला है, मधुबन में भट्टी करने को, हम कितने लकी हैं। तो हमने सोचा देखो जो आते हैं वो अपने आप को कितना लकी समझते, जो रहते हैं वो कितने लकी हैं, तो इसलिए हम कितने भाग्यशाली हैं हमको सोचने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि भाग्य के गुण गाते रहते हैं। तो आप भी भाग्यशाली कम नहीं हो, हम भी कम नहीं हैं, जो बाबा के बच्चे बनते हैं सब बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं ना। मुझे यही टॉपिक मिली है, ब्रह्मा बाप के समान बेफिक्र बादशाह कैसे बने, तो ये मेरी फेवरेट टॉपिक है। ब्रह्मा बाबा की जो बातें कहो वो मैं खुले दिल से कहती हूँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को नजदीक से देखने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो इस हिसाब से भी बहुत लकी हूँ, क्योंकि मम्मा बाबा दोनों का हमने बहुत प्यार पाया है। बाबा की बहुत उम्मीदें थी कि बच्ची, बाबा मुझे सदैव जब भी देखते थे यही कहते थे तुमको विश्व की सेवा करनी है, विश्व की सेवा करनी है। शुरू से छोटी थी तभी भी बाबा कहते थे, तो देखो बाबा के महावाक्य सिद्ध हुए हैं, सारे विश्व की आत्माएं आती है। हाँ घाटकोपर जी 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 जरूर, क्यों नहीं होगा। नल्ली दीदी भी बहुत कहती है, तो हमारी कन्या है बहुत प्यार से कहती है, शकुबेन और हम दोनों साथ में थे, ये बताया आपने एक ही ट्रेनिंग में जब बाबा व्यक्त हुए, उसके बाद जो कन्याओं की ट्रेनिंग हुई उसमें शकुबेन और हम दोनों उसी में थे 69 में, कितने साल हो गए, 69 माना 44 ईयर्स, 44 साल हो गए, पर ज्ञान में तो 59 60, तो उसको तो कहेंगे कितने साल हो गए 60 से, 53 ईयर्स, 53 साल हो गए। तो इसीलिए जैसे बाबा कहते हैं, हर एक यही अंदर में सोचे, मैं कितना भाग्यवान हूँ। जो बाबा मुरली में कहते हैं कि अपने भाग्य के गुण गाओ, वाह बाबा वाह, वाह मैं वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। क्यों? क्योंकि इसी से ही बेफिक्र बनेंगे। बेफिक्र बादशाह बनने की यही विधि है। तो ब्रह्मा बाबा को देखा कि कैसे बेफिक्र बादशाह के रूप में थे। कलयुगी दुनिया में जो राजा हैं, उनको भी कितना फिक्र रहता है। आज जो आज के राजा माना आज के नेता, तो कितना उनको फिक्र है। उनका चेहरा आप देखेंगे तो सदा जैसे उदास, मायूस, चिंतित ही चेहरा होता है। केवल जब फोटो निकालना होता है ना, तो मुस्कुरा देते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि फोटो निकालने वाला थोड़ी सी देरी करे तो फिर अंदर में फिर टेंशन आ जाता है। उस वक्त तो मुस्कुरा देते, लेकिन देर तक मुस्कुरा नहीं सकते, क्योंकि उसमें भी मेहनत लगती है ना। तो इसीलिए वहाँ फोटोग्राफर बड़े होशियार, फट 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 तुरंत फोटो फ्लाई फोटो निकाल देते। ऐसे नहीं कि स्माइल प्लीज ये सब कुछ भी नहीं कहना होता है, पर वो एक आर्टिफिशियल स्माइल एक दो को देंगे, उस समय फोटो निकलता है। और फिर तो देखो वही चिंता से ग्रसित। पर बाबा ने हमारी मुस्कुराहट नेचुरल बना दी है। और हमको तो कई लोग कहते हैं, जब भी कई के मिलते हैं ना, पता नहीं एक कमेंट देते हैं, कहते हैं बहन जी आप सदा मुस्कुराते रहते हो, सदा मुस्कुराते रहते हो, तो आप थकते नहीं हो, मुस्कुराते रहते हो, थकावट नहीं होती, मुस्कुराते ही रहते, क्योंकि कई बार मुस्कुराने में थकावट होती है। तो आप मैं कहती हूँ अच्छा, मैं मुस्कुराती रहती हूँ, तो मुझे तो ये पता नहीं कि मुस्कुराती रहती हूँ, ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि सारा समय थोड़ी कोई चेहरा देखेंगे आईना में कि मुस्कुरा रहे हैं या क्या है। वो तो आईना में चेहरा देख करके मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि हाँ मुस्कुरा रही हो। तो बाबा तो हमें कहते हैं कि तुम चलते फिरते बाबा की मूर्त बनते हो, जो आपके द्वारा बाबा की सूरत दिखाई दे। तो ऐसी मूरत बनेंगे तभी तो वो सूरत दिखाई देगी, जैसे ब्रह्मा बाबा थे। एक सेकंड में बच्चों के साथ थे और एक सेकंड में एकदम सबसे न्यारे हो जाते थे। तो हमें भी बाबा यही सिखाते हैं। तो कैसे बनेंगे ब्रह्मा बाप समान बेफिक्र। बाबा ने उसके लिए ज्ञान तो हमें बहुत दे दिया है, और ब्रह्मा बाबा को हम देखते थे कैसे उस ज्ञान को बाबा अप्लाई करते थे अपने जीवन में। कितनी सारी बातें आई, कितने प्रसंग आए, लेकिन बाबा बेफिक्र बादशाह थे। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, उससे भी पहले शिव बाबा ने आदेश दिया कि तुमको नई दुनिया की स्थापना करनी है, उसके लिए माताओं बहनों को अपनी सारी प्रॉपर्टी विल करके देनी है। तो बाबा ने जरा भी नहीं सोचा कि फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा, जरा भी नहीं सोचा। बस शिव बाबा का आदेश मिला, बिना कुछ भी सोचे आगे का, बाबा ने आज्ञाकारी बन करके बाबा का जो बाबा ने कहा उसको फॉलो किया, जरा नहीं सोचा। हम लोग क्यों नहीं बेफिक्र बादशाह बन पाते हैं? क्योंकि एक होता है पोजेसिवनेस, ये मेरा है। तो जहां मेरा है ना, तो वहां अंदर में डर रहता है, ये मेरा है, मेरा कहीं छूट न जाए, मेरे से कहीं कोई उठा न ले, कोई चोरी न कर ले, कोई ले न ले, मेरी सीट न चली जाए, मेरा ये न हो जाए, मेरा वो न हो जाए। तो जहाँ मेरापन है वहां पर अधिकार भी है, और पोजेसिवनेस, उसको पकड़ के रखने की, होल्ड करने की एक जैसे हमारी आदत बन जाती है और फिर अंदर में डर भी है कि छूट सकता है, तो फिर उस डर के कारण चिंता, हाई छूट गया तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। और बाबा तो ड्रामा का इतना सुंदर ज्ञान दिया है कि जो होगा उसमें कल्याण होगा। जब विदेश से मैं मधुबन में रहना शुरू किया तो अफ्रीका में सेवा की, बहुत चारों तरफ सेवा हुई। और जैसे ही मैं मधुबन में आई तो दादी ने मुझे कहा कि तुम मधुबन में रहोगी, क्योंकि उस समय विदेशी भाई बहनें आने लगे थे 76 में और शिविर शाह चालू हो चुकी थी, तो इसलिए कोई हैंड टीचर की जरूरत थी मधुबन में। तो दादी ने मुझसे कहा, अब जैसे, मैंने कहा दादी आप जैसे कहेंगे। तो जैसे वहाँ मॉरिशस में थी तो वहाँ पर उनको पता चला कि मैं वापस नहीं आऊंगी, तो उनके पत्र के पीछे पत्र आने लगे, फोन आने लगे कि क्यों नहीं आएंगे। तो हमने उनको लिखा, भाई हमें दादी जी ने मधुबन में रखा है और वहाँ कोई और अच्छी बहन मिल जाएगी। तो ये सारी जो बातें थी, तो लेकिन एक सेकंड के लिए भी मुझे कोई ख्याल नहीं चला कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, दादी जी ने कहा, माना, भगवान वाच्य है ये, तो पत्थर पर लकीर की तरह, एक बार भी संकल्प नहीं आया। बस फिर उसके बाद बाबा ने मुझे इतना सुंदर वरदान दिया। बाबा ने कहा, जब मैं बाबा से मिली, अव्यक्त बाबा से, तो बाबा ने मेरे से पूछा, आप कौन सी गंगा हो, कौन सी गंगा हो? तो मैंने कहा मैं ज्ञान गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा, ज्ञान गंगाएं तो सभी है, आप विशेष कौन सी गंगा हो? तो मैंने कहा मैं बहती गंगा हूँ। तो बाबा जी का, बहती गंगा तो वो है जो सेंटरों पर रहती है, आप तो मधुबन में रहती हो, तो आप कौन सी गंगा हो? तो मैंने कहा अभी तीसरी कोई कौन सी गंगा होती है, मुझे तो कोई और नाम नहीं आ रहा था। तो मैं चुप हो गई, मैंने जवाब नहीं दिया। तो बाबा ने कहा, जो बहती गंगा वो सेंटरों पर रहती है, क्योंकि गंगा तो बहती जाती है और जो उनके भक्त होते हैं वो वहीं रहते हैं, तो भक्त तो अपने शहर में रहेंगे और गंगा उनके पास जाती रहती है, तो जो सेंटरों पर बहने रहती है वो बहती गंगा है, यानी वो तो वहीं पर रहती है और भक्त उनके पास आते हैं या सेंटरों पर घूमते हैं और भक्त उनके पास आते हैं, तो आप कौन सी गंगा हो? तो फिर बाबा ने मुझे कहा कि आप हर की पौड़ी की गंगा हो। हर की पौड़ी की गंगा को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर की पौड़ी की गंगा के पास सारी दुनिया आती है। वो जो बहती गंगा है वो बहती जाएगी, सब जगह भक्तों के पास जाएगी, भक्त अपने जगह और भक्तों के पास वो गंगा जाती है ना, कहाँ से शुरू होती है और ऋषिकेश हरिद्वार होते 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 कहाँ जाकर के कलकत्ता में सागर में समाती है, और भक्त उनके वहीं होते हैं और वो बहती जाती है, आगे जाती जाती है। लेकिन हर की पौड़ी की गंगा, स्थान का महत्व है ना, भले वो गंगा भी बहती है लेकिन हर की पौड़ी की गंगा का क्यों महत्व है, क्योंकि सारी दुनिया वहां नहाने आती है। सारी दुनिया, कोई सारी जगह जहाँ गंगा बहती है वहां नहीं जाती है, पर कहाँ आती है, हरिद्वार में आती है। तो हरिद्वार हरि का द्वार है वो। तो बाबा ने मुझे कहा, तुम हर की पौड़ी की गंगा हो और सारी दुनिया तुम्हारे पास आके तुम्हारे में नहाएगी। ये बाबा ने मुझे वरदान दिया उस समय। यानी ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमको जरा भी संकल्प नहीं आया कि मैं इतना विदेश छोड़ करके मैं यहाँ आके रहूं, क्योंकि अफ्रीका में, मॉरिशस में खूब सेवा की, बहुत सब कितने देशों में गए, उड़ते ही रहते थे, सब प्रकार की सेवा, मानो इतनी खुशी बाबा की बेहद सेवा में थे। और मधुबन में जब रहना शुरू किया तो यहाँ ही रहना, माना जो यहाँ आए उनकी सेवा, अब हम तो कहीं नहीं जाएंगे। तो थोड़ा समय जरूर कुछ लगा, तो अभी यानी क्या नया पाठ खुलेगा यहाँ रहने से, क्योंकि वहाँ की सेवा तो कुछ और ही थी। तो फिर जब बाबा ने ये कहा तो उसके बाद हमने महसूस किया कि अरे वहाँ तो छोटे से को, जैसे वो मेंढक होता है ना, मेंढक क्या समझता है, मेंढक एक छोटे से कुएं में होता है, और छोटे से कुएं में रह करके वो समझता मैं तो सागर में हूँ। उसको क्या पता सागर क्या होता है, उसके लिए वो कुआं ही सागर है क्योंकि वहीं पर वो घूमता रहता है। और ये तो सागर का किनारा, सारी दुनिया यहाँ आती है। और फिर जब लोगों ने हमको कहना शुरू किया कितनी भाग्यशाली कितनी भाग्यशाली, तो और भी नशा चढ़ गया। तो सचमुच हम महसूस करते हैं कि बाबा ने इतना ऊंचा भाग्य दिया जो हम बाप समान सहज बन सकते। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब हदों को तोड़ दिया, बिल्कुल सब हदें तोड़ दी, मेरा कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी नहीं। भले बच्चों के खातिर बाबा कई बार कहते थे ताकि बच्चों का ध्यान रख करके कि कहीं बच्चे निराश न हो जाए, उदास न हो जाए। कई बार बाबा कहते हैं ना कि माया जब आती है तो पहले इंजन को लगती है, माने तूफान आता है तो पहले कहाँ लगेगा, इंजन को लगेगा, फिर डब्बों को लगेगा। तो बच्चे ये इंजन है, तो सारे माया के तूफान पहले यहाँ आएंगे फिर बच्चों के पास जाएंगे। तो बच्चे देखो ये कैसे बेफिक्र बादशाह होके रहता है, भले कितना भी आए लेकिन बच्चे घबराना नहीं। कितनी परीक्षाएं बाबा के सामने आई, बहुत परीक्षाएं आई, खास करके जब अनेक बहने कैसे घरों को छोड़कर भाग करके बाबा के पास आई, तो बाबा को जैसे कितनों ने कलंक लगाया। कलंक ऐसी छोटी बात नहीं थी, कलंक क्या लगाए कि एक दादा लेखराज है, वो अपने आप को कृष्ण कहलाता है और ये सब इनके पास 400 रानियां इनके पास है, इन सबको भगा करके लाया है। क्योंकि कृष्ण के लिए दिखाते ना, भगाया सत्यभामा को, भगाया रुक्मणी को, भगाया इन सबको, भगाया अपनी पटरानी बनाया। तो ये सब ये इनकी सब पटरानियां हैं 400, ये अपने आप को कृष्ण कहलाता है और ये कहता है कि मैं तो कृष्ण हूँ और मुझे 16108 रानियां चाहिए, अभी 400 मिली है। लोगों ने इतना मानो बाबा के प्रति कलंक लगाए। और बाबा सुनकर कहते थे बच्चे ये तो दुनिया में कलंक लगेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी कोई कृष्ण हूँ मैं कहता हूँ, ये तो बाबा की जादूगरी है कि कैसे इनसे कृष्ण का साक्षात्कार सबको हो रहा है। तभी तो वो आकर्षित होकर के आई बहने, मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं कृष्ण हूँ, मैं तो कहता नहीं हूँ, मैं तो साधारण हूँ, मैं तो एक गृहस्थी था, परिवार मेरे साथ है, मेरे तो देखो ये बाल बच्चे, मैं कहाँ कहता हूँ। तो लोगों को कहाँ समझ में, अगर देख रहे ना इतनी सब भाग करके आई बाबा के पास, वो तो शिव बाबा का चमत्कार था। फिर उसके बाद जब भारत में आए 1950 में, तो अपने धन से बाबा ने सबकी पालना की 14 साल। ये नहीं सोचा ये मैं ये और है दूसरे है, नहीं, सब बाबा के बच्चे हैं, सब शिव बाबा के बच्चे हैं और अपने धन से पालना की। फिर जब माउंट आबू आए तो पैसा खत्म हो गया, क्योंकि कहाँ से आएगी आमदनी, कहाँ से होगी, जो थी वो सब खर्च हो गई। तो जब यहाँ आए तो बेगरी पाठ शुरू हो गया, ऐसा बेगरी पाठ जो दिन में खाने को नहीं। अब बाबा ने कैसे इतना सुंदर रूप से बच्चों को पता भी नहीं होने दिया कि यज्ञ में पैसा नहीं है। सवेरे सवेरे बाबा कहते तो चलो बच्चे चलो जंगल में जाएंगे, वहां पर बेरी खाएंगे, चेरी खाएंगे, यहाँ बहुत आबू में बहुत सारे पेड़ है छोटी छोटी, वो करौंदे चेरी ये क्या वो होते हैं ना क्या बोलते जामुन, बहुत जंगल में बहुत है, तो चलो बच्चे वहां जाएंगे। तो सवेरे सवेरे जाते थे और खूब चेरी और जामुन और आम ये सब इस समय बहुत है, तो वो खा करके आते थे, तो नाश्ते की जरूरत ही नहीं। अच्छा 10 बज गए, 11 बज रहे हैं, बाबा भोजन क्या बनाए, 4 आना पड़ा है केवल भंडारी में, क्या बनाए। तो बाबा कहते थे बच्चे शिव बाबा को हमने जीवन दी है, बाबा जरूर बच्चों को खिलाएगा, बच्चों को भूखा नहीं रखेगा। और कैसे कोई पत्र आ गया और पत्र खोला उसने पैसे पड़े, कौन भेज रहा है कुछ पता नहीं, कोई कुछ पता नहीं किसने भेजा, अपना नाम भी नहीं कुछ नहीं, कहां से आया पता नहीं। और बाबा ने कहा जाओ बच्चे ये लो और चावल ले आओ, जाओ जाके आटा ले आओ, हाँ ये सब्जी लाओ, और भोजन हो गया। फिर शाम को देखो तो फिर पत्र आ गया और फिर जाओ हाँ ये सब ले आओ। और तो कभी भी बच्चों को महसूस नहीं होने दिया कि ऐसा नहीं है। कभी बाबा खेल खेल में कहते थे कि आज है ना बच्चे ये 8 दिन बिल्कुल और कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ ढोडा और छाछ। ढोडा होता है ना वो ज्वार का या है रोटला होता है, ज्वार ज्वार का भाकरी ज्वार की वो और छाछ बस। सब्जी लेंगे दाल लेंगे तो उसमें तो खर्च होता है, महंगे होते हैं, तो बस छाछ और ढोडा बस यही 7 दिन तक यही खाना है। और इतना प्यार से बाबा खुद खा रहे हैं तो बच्चे क्यों नहीं खाएंगे। तो मानो इतना करीब 1 साल तक ये पाठ चला। पर कहाँ से आ रहा है, बाबा कहते थे ये तो सावल शाह की हुंडी, सावल शाह हुंडी सकार रहा है। वो सावल शाह एक कहानी आती है सावल शाह की, तो एक संत था वो बस सारा दिन क्यों भाई मोबाइल बज रहे हैं क्लास में, ये बजाता ही जा रहा है, अच्छा आता ही नहीं होगा कैसे बंद करना, कई बार कईयों को आता ही नहीं कि बंद करना कैसे आता है। खैर तो सावल शाह हुंडी सकारेगा एक कहानी आती है कि एक भक्त था तो वो बस अपने प्रभु की याद में बैठा रहता था। तो उनकी पत्नी कहती थी ये क्या सारा दिन तुम यही काम करोगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे, मेहनत करो कुछ कमाई करो। तो कहने सावल शाह हुंडी सकारेगा, सावल शाह हुंडी सकारेगा। और कहाँ से उनको धन आ जाता था, कहाँ से खाने को मिल जाता था उसको जरा भी चिंता नहीं थी, पर मिल जाता था। तो सावल शाह कोई था तो वो उनको पैसा भेजता रहता था, ऐसे कुछ कहानी आती है। तो बाबा भी कहते थे कि बच्चे सावल शाह हुंडी सकारेगा। हाँ तो कैसे ये चला, फिर तो 1952 से सेवा केंद्र चारों ओर खुलते गए। और फिर जो बच्चे जो दादियां उस समय बाबा के साथ रही, ब्रह्मा बाबा के साथ रही, उनको बाबा भेजते गए जाओ सेंटर खोलो सेंटर खोलो। और वो जो दादियां बाहर गई उनके अंदर में भी था कि बेगरी पाठ चल रहा है मधुबन में, बेगरी पाठ चल रहा है। तो कैसे वहां पर जो उनको मिलता था ना वो बचाती थी। समझो कोई घी का डब्बा ले आया मधुबन भेजो, ये फल लाया मधुबन भेजो मधुबन भेजो मधुबन भेजो, बस मधुबन ही उनकी बुद्धि में था। भले सेवा वहां करती थी तो वहां भी बाबा ने भंडारा भरपूर किया तो मधुबन में भी आ जाता था। 1954 में दादी प्रकाशमणि और दादी रतन मोहिनी जी और दादा आनंद किशोर जी जापान गए। ये भी कैसे उनको निमंत्रण मिला, टिकट मिली, सब कुछ मिला। तो वहां से तो काफी कुछ उनको डोनेशंस मिले। अब बस इनकी बुद्धि में यही था बस मधुबन भेजा मधुबन मधुबन मधुबन। तो जैसे वो आए मधुबन में तो बाबा को तो पता था, तो कैसे बाबा ने उनका इतना आयजान किया, इतना उनका स्वागत किया, क्योंकि उनकी बुद्धि में भले वहां सेवा कर रहे थे लेकिन बुद्धि में मधुबन 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 बाबा मधुबन बाबा। तो ये तो शिव बाबा की कमाल थी। और बाबा देखो बेफिक्र बादशाह, बिल्कुल जरा भी एक रिंचक मात्र भी कोई चिंता की रेखा बाबा के चेहरे पर नहीं, बाबा के मस्तक पर नहीं। तो बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं चलता था कि इतनी है ये कमी इस प्रकार से। और आ जाता था तो बच्चे तो खुशी मौज में ही रहते थे, पर बाबा जानता था। इसलिए बाबा की साकार मुरलियों में कई बार आता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, है ना, गोथरी माना थैली, गुड़ कितना मीठा है वो किसको पता, वो थैली जो जिसमें गुड़ है उसी को ही पता ना, क्योंकि उसको लगती रहती है गुड़ जो है वो थैली को लगता रहता है तो उसको मालूम है कि गुड़ कितना मीठा है। या जो खाए अब जब तक खोले ही खोले पर उसकी थैली को तो पता चल ही जाएगा ना। तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, बाबा के आगे इतने पत्र आते हैं ये सब आते हैं। कई बार बाबा कहते थे जिसके माथे मामला वो उसको नींद कहाँ आए। किसके सिर पर बहुत जिम्मेदारी होती है तो उसकी नींद फिट जाती है, लेकिन बाबा की कभी नींद फिटी नहीं। अगर बाबा अमृत वेले 2 बजे उठ जाते थे तो बाबा की लगन में उठते थे, ये नहीं कि नींद फिट गई इसलिए उठे। कई लोग ऐसे होते ना, रात को नींद फिट गई, थोड़ा सा आई नींद और एकदम फिट गई क्योंकि चिंता है। बाबा को उस प्रकार से तो चिंता कभी नहीं हुई। बाबा कहते थे मेरा थोड़ी कार्य है, मेरा तो कार्य है ही नहीं, किसका कार्य है? शिव बाबा का कार्य है, मेरा कार्य होता तो मैं फिक्र करता। इस पर एक जोक सुनाते हैं, बहुत कई प्रकार के जोक सुनाते हैं। तो एक जोक आता है कि अंगद का मिसाल आता है ना, कि अंगद जब रावण के दरबार में गया तो रावण को उसने ललकारा कि मैं किसका दूत बन के आया हूँ। तो उसने कहा कि देखो राम इतना शक्तिशाली है और मैं उसका दूत, मैं भी इतना शक्तिशाली हूँ और मेरी कितनी शक्ति है आप मापना चाहते हो? तो उसने क्या किया, वो अपना पैर जमाया। तो पैर जमाया और रावण को कहा अभी तुम इसको हिलाओ, हिला के तो दिखाओ। तो आप अगर दूत की इतनी शक्ति है तो जिसने भेजा उसकी कितनी शक्ति होगी, तो आपको पता चल जाएगा। तो सचमुच कितनों ने कोशिश की लेकिन अंगद के पैर को हिला नहीं सके। तो इस पर एक जोक आता है, जोक क्या आता है कि जब वो वापस गया अपने राम के पास तो किसी ने उसको कहा, अब ये एडिशन कर दिया है, कि किसने कहा कि अरे अंगद अगर सचमुच रावण तेरा पैर हिला लेता था तो? उसने कहा मुझे क्या चिंता, चिंता तो जिसकी पत्नी है उसको चिंता ना। जिसके कारण मैं गया, यानी अंगद किस लिए गया, सीता के लिए तो गया कि भाई तुम सीता को छोड़ो, तो जिसकी पत्नी है वो उसको चिंता होनी चाहिए ना, मैं क्यों चिंता करूं। तो अगर मेरा पैर हिलता तो ये तो राम की प्रॉब्लम है ना, मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आज के जमाने में ऐसे कहेंगे, आज की कॉमन भाषा में ये कहेंगे मेरी प्रॉब्लम तो थी नहीं, प्रॉब्लम थी किसकी, राम की। तो इसीलिए वो जाने अगर मेरा पैर हिल जाता था, लेकिन हमने तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स तो राम को दे दी, मैं तो उसका दूत बन करके आया, तो दूत को तो कोई चिंता नहीं होती ना। जैसे बाबा भी कहते हैं अगर शिव बाबा को श्रीमत देते हैं और बच्चे कहते बाबा ये कैसे होगा, बाबा ये कैसे होगा, इसका मतलब कि बाबा पर विश्वास नहीं है। बाबा कैसे होगा, बाबा को अपनी राय देते हैं। बाबा को बच्चों की राय चाहिए क्या? बाबा को तो बच्चों की राय नहीं चाहिए। और बाबा ज्यादा जाने त्रिकालदर्शी बाबा है या हम बच्चे हैं, किसमें हमारा कल्याण है वो बाबा जानते हैं या हम जानते हैं? बाबा जानते हैं। तो इसीलिए हाँ बच्चे अपनी राय बहादुर बनकर के राय देते हैं। तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये आखिर राय देता कौन है। समझो कोई सोचे ब्रह्मा बाबा राय देता है, अच्छा चलो ब्रह्मा बाबा भी राय देवे, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ कौन है? शिव बाबा है। तो अगर कोई गलती हो भी गई तो जिम्मेदार कौन? शिव बाबा। हाँ, क्योंकि वो तो केवल निमित्त है ना ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा उनके द्वारा बोल रहे हैं। तो इसीलिए सारी जिम्मेदारी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की ले ली। इसलिए कहा, जैसे दिखाते ना कि बस अर्जुन को भगवान ने यही कहा, तुम केवल युद्ध करो बस, बाकी तुम कोई भी चिंता मत करो, सब चिंता मेरे पर, रथ मेरे को दे दो, मैं रथ चलाऊंगा, मैं बीच में नहीं आऊंगा, तुम युद्ध करो, मैं बीच में नहीं आऊंगा तुम्हारे युद्ध में, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध तुमको करनी है। इसलिए बाकी सब जिम्मेदारी मेरी, रथ चलाने की जिम्मेदारी वो मेरी, तुमको केवल युद्ध करनी है। तो अगर हमने बाकी सब जिम्मेदारी बाबा को दे दी तो फिर चिंता किस बात की? अगर चिंता कर रहे माना मेरा कुछ है, मेरा कुछ है। तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी जिम्मेदारी शिव बाबा को दे दी थी, तो बेफिक्र बादशाह तो थे ही नहीं, कैसे नहीं बनेंगे बेफिक्र बादशाह। तो बाबा बच्चों को हर बार, जो भी बच्चे जाते थे, क्योंकि बाबा के मुरली में भी कई बार आया है कि बच्चे अगर कोई भी ऐसी बात हो बाबा को पत्र लिखो, आप रूबरू आकर के बाबा से पूछ सकते हो। नहीं, मुरलियों में कई बार आता है, तो साकार में बाबा के पास जाते थे क्योंकि बाबा तो बहुत अनुभवी थे, बिजनेस के इतने बड़े अनुभवी थे, लौकिक परिवार के इतने अनुभवी थे, राजाओं महाराजाओं के साथ बाबा का उठना बैठना होता था, अंग्रेजों के साथ उठना बैठना होता था, तो बाबा के पास कई प्रकार के बच्चे आते थे, बाबा से राय लेते थे, बाबा मैं क्या करूं, बाबा ये है बच्चों की प्रॉब्लम है, पति की प्रॉब्लम, या मतलब कोई भी बात, बिजनेस की बात, तो बाबा राय देते थे साकार में। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बाबा के अव्यक्त होने से 6-8 मास पहले बाबा बिल्कुल न्यारे होते गए, बिल्कुल न्यारे, क्योंकि कर्मातीत अवस्था को पा रहे थे, तो बिल्कुल न्यारे होते गए। जैसे बाबा के सामने कोई बच्चे जाते भी थे, बाबा को कुछ ऐसी बात सुनाते भी थे, पर बाबा जैसे सुनते हुए नहीं सुन रहे, न्यारे। एक बार मनोहर दादी जी अपना मिसाल देती है कि दादा विश्व किशोर, बाबा का इतना अनन्य बच्चा, वो बाबा के, यानी बाबा ने उनको बॉम्बे भेजा था, ये 68 की बात है, बीमार थे तो ऑपरेशन कराया, फिर वहीं बॉम्बे में उनकी डेथ हो गई। तो वो जो शरीर छोड़ा उसके बाद के फोटोज निकाले उनके डेड बॉडी के, वो संस्कार के, मतलब डेड फोटो, सोचा कि बाबा के पास ले जाएंगे, बाबा को दिखाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा वहीं संस्कार करो बॉम्बे में। तो जब फोटो लेकर के आई तो बाबा को कहती, बाबा डर डर के, तो बाबा तो बिल्कुल जैसे 68 की बात है, ये फरवरी की बात है, तो लगभग एक साल से जैसे बाबा उपराम ही होते गए, उपराम होते गए। बाबा मैं फोटो लाई हूँ, तो बाबा ने कहा किसके? तो कहा बाबा विश्व किशोर भाव के। बाबा कहे उसको क्या देखना, वो तो बाबा की गोद में बैठा है, उसको क्या देखना। इसलिए बाबा ने फोटो देखे नहीं, देखे ही नहीं। एक बहन बाबा के पास गई, उसने बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखा था बाबा को, सेवा समाचार, बहुत मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये सेवा की, ये सेवा की। और बाबा के पास आई, पत्र तो लिख दिया था, समाचार तो दे दिया था, और फिर वो बाबा के सामने आई और बाबा को सुना रही है। तो एक मिनट तो बाबा ने सुना, उसके बाद बाबा ने कहा बच्ची ये तो आपने पत्र में भी लिखा था ना। तो कहा हाँ बाबा, मैंने पत्र में सब लिखा, ये किया वो किया, फिर बड़ा बड़ा चढ़ा करके बोलने लगी। बाबा ने कहा बाबा जानते हैं, ये नहीं कहा कि मत बोलो बहुत सुना मैंने, ऐसे नहीं, बाबा जानते हैं। माना इसका मतलब क्या हुआ? अभी बोलने की जरूरत नहीं है, इतना आवाज में आने की जरूरत नहीं है। फिर तो हम बाबा को देखते थे कि हमारे मन में इतनी बातें होती थी, बाबा को ये सुनाओ ये सुनाओ वो सुनाओ, और जैसे बाबा के पास गए सब भूल जाता था, सब भूल जाता था, क्योंकि बाबा की स्थिति कितनी ऊंची देखते थे, और ऊंची स्थिति के आगे हमारी स्थिति इतनी ऊंची नहीं भी थी, तो इतनी ऊंची स्थिति के आगे हम जो इतने कम स्थिति वाले क्या सुनाएं। बाबा की स्थिति से हमारी, हमको भी जैसे पुश मिल जाता था, तो वो छोटी छोटी बात बाबा को क्या सुनाए, उनकी वो तो कितनी ऊंची है। तो सब छोटी छोटी बातें लगती थी और दुनिया की, क्योंकि बाबा तो न्यारे हो गए, उपराम हो गए। तो कैसे वो बेफिक्र बादशाह के साथ साथ उपराम भी थे, मेरा कुछ नहीं। तो बाबा के अंतिम दिनों में ये जो शांति स्तंभ बना है ना, तो ये बाबा के मूल्यों में ही चला है ये शब्द, बच्चे तुम्हें शांति स्तंभ की तरह बनना है। जैसे एक प्रकाश स्तंभ होता है, चारों ओर अपना प्रकाश फैलाता है, तुम्हें शांति स्तंभ की तरह सबको शांति का ही प्रकंपन फैलाना है। तुम्हें शक्ति स्तंभ बनना है, तुम्हें ज्ञान स्तंभ बनना है, तुम्हें पवित्रता स्तंभ बनना है, मानो जो भी आत्मा के गुण है उनका स्तंभ बन करके सबको सकाश देनी है, ये बाबा कहते थे। और बाबा प्रैक्टिस कराते थे, जैसे मैं लाइट हाउस हूँ और मैं चारों तरफ अपना प्रकाश फैला रहा हूँ। मनसा सेवा बाबा उसी समय से कहने लगे थे, एक जगह बैठकर जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर है लेकिन उसकी लाइट चारों ओर फैलती है, रास्ता दिखाती है, ऐसे तुम्हें स्तंभ बन करके सब आत्माओं को रास्ता दिखाना है। और बाबा भी बात कर रहे हैं और करते करते एकदम जैसे न्यारे हो गए। इसलिए बाबा के सामने जाते ही एक अशरीरी अवस्था का बहुत सहज अनुभव करते थे क्योंकि बाबा इतने उपराम थे। बातें बहुत आती थी बाबा के सामने, लेकिन बाबा सुनते हुए भी, जैसे बाबा कहते ना न सुनो, देखते हुए न देखो, और बाबा के आगे आते ही जैसे टचिंग अपने आप आ जाती थी किसका सॉल्यूशन क्या है। बाबा को शब्दों में आने की जरूरत ही नहीं रहती थी। हमें तो कई बार बाद में जब अव्यक्त बाप दादा से मिलते थे तो हम कई बार बच्चों को देखते थे बाबा से प्रश्न करें, क्योंकि उस समय बाबा इंडिविजुअल अव्यक्त बाबा से मिलते थे, इंडिविजुअली मिलते थे, तो छोटी छोटी बातें अव्यक्त बाप दादा से कर रहे हैं। तो वो भी देखा कि कैसे बाबा उनको न्यारा प्यारा बना रहे हैं। बाबा के सामने एक व्यक्ति आया, अव्यक्त बाप दादा के सामने, तो साकार के सामने तो बहुत आते थे, तो अव्यक्त बाप दादा के सामने आया और बाबा को कहता है, बाबा मेरा बेटा है ना दुकान खोल रहा है। तो बाबा कौन सा अच्छा समय होगा मुहूर्त का, अब बताओ, बाबा से पूछ रहा है। अव्यक्त बाबा से पूछ रहा है कि मुहूर्त का समय कौन सा अच्छा होगा। तो मैं इंतजार करती कि बाबा जवाब क्या देंगे, तो बाबा ने कहा, बच्चे वो कोई ज्योतिषी से पूछ लो। क्या कहेंगे बाबा, वो कोई ज्योतिषी से पूछ लो, बाबा तो आया है पतितों को पावन बनाने के लिए। तो बाबा पतितों को पावन बनाने आया है, मतलब ये भले कहा नहीं लेकिन भाव यही था कि तुम्हारी दुकान का मुहूर्त कब करना है ये बाबा भगवान से पूछना है क्या, वो ज्योतिषी बहुत बैठे हैं वो आपको बता देंगे, ये कार्य भगवान का नहीं है, ये काम दूसरा है। भगवान का कार्य क्या है, आत्माओं को पावन बनाना। इतनी बांधेली गोपिकाओं के पत्र आते थे, इतने कईयों को बंधन होते थे, बहुत कुछ मार खाती थी और बाबा को पत्र लिखती थी, बाबा हमें बंधन से छुड़ाओ, बाबा हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा उनको पत्र में जरूर जवाब देते थे कि बच्ची पतियों का पति अब आपको मिला है, तो अगर बाबा को कहती हो तो बाबा तो ये कहेंगे उस पतियों के पति को याद करो तो ये बंधन तुम्हारे खत्म होंगे। यही एक ही, इसलिए जैसे मुरली में बाबा का आता है ना, बाबा की याद क्या है, एक अमृत धारा है। अमृत धारा के लिए कहते हैं 100 बीमारियों का इलाज एक अमृत धारा में, वो अमृत धारा सारी बीमारियों का इलाज कर सकता है, अलग अलग दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। तो सब बीमारियों का इलाज किसमें है, बाबा की याद में। सचमुच देखा गया है कि कोई भी ऐसी बात होती थी, चलो हम बाबा को याद करते हैं, और बाबा कैसे सूली से कांटा कर रहा है। कई बार तो बाबा मनसा से सेवा भी करते थे उन आत्माओं की। विश्व किशोर को जब भी बहुत तकलीफ हुई तो बाबा रात रात भर जागे थे, यानी बाबा जैसे सकाश दे रहे थे, और वो महसूस करता था हॉस्पिटल में कि जैसे सारा दर्द खत्म हो गया, सारा दर्द खत्म, बाबा यहां से उनको शक्ति देते थे। मानो ये ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बादशाह के रूप में भी थे, पर बच्चों के प्रति इतना प्यार था, वो प्यार भी बाबा दर्शाते थे, बच्चों की सेवा भी करते थे, और जब देखो तो न्यारे से न्यारा, तो न्यारे से न्यारा भी तो प्यारे से प्यारा भी, ये बाबा को हमने देखा। तो हम कैसे बाप समान बने इसमें, दादी जी को भी हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, अभी अभी दादी जी सबसे मिल रही, अभी देखो दादी इतनी न्यारी हो गई, इतनी न्यारी हो गई, जो बात मत पूछो, कर्मातीत अवस्था दादी की होने लगी। पता चलता था दादी के आगे हम कुछ बोल नहीं सकते, बस बैठे रहते थे, तो ब्रह्मा बाबा के भी आगे ऐसे ही बैठे रहते थे, बाबा की स्टेज इतनी ऊंची, बाबा कुछ बोले हम ना बोले, हम बोलेंगे तो ये भी टाइम वेस्ट है, बाबा कुछ हमें श्रीमत देवे, बाबा हमें कुछ वरदान देवे, बाबा हमारे अंदर शक्ति भरे, ये अनुभव बाबा से करते थे। तो हमको क्या बनना है, कैसे बनना है, छोटी छोटी बातों में चिंता करनी है, छोटी छोटी बातों में दुखी होना है, किसने मुझे कुछ कह दिया है, ऐसे क्यों कहा मुझे, मैं क्या समझता है अपने आप को, मैं भी कोई कम हूं क्या, आता है ना, फिर कुछ ऐसे शब्द कह दिए, फिर उसका पश्चाताप, ऐसे मैंने क्यों कहा, मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए था, अभी कैसे मैं उनके सामने जाऊं। तो अभिमान भी आता है, अपमान भी महसूस होता है, अंदर में डर भी है, सारी कमजोरियां हम दिखाते हैं। तो उसकी बजाय क्या बन जाओ, क्या बन जाओ, हिसाब किताब चुकतू हो रहे, ये सब कर्म भोग भी आ रहा है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। बाबा के सामने कोई डॉक्टर भी नहीं वो हिम्मत रखता था बाबा से पूछने की कि बाबा आप ठीक है। एक बार का मिसाल दूं आपको कि बाबा ने ऑपरेशन कराया था, बॉम्बे में ही बाबा गए थे, तब तो यह हॉस्पिटल वॉस्पिटल कुछ नहीं था, हर्निया का ऑपरेशन बाबा ने कराया था। तो हर्निया का ऑपरेशन हो गया, उसके बाद सुबह जैसे डॉक्टर आया, हॉस्पिटल में ही थे बाबा, तो जब तक डॉक्टर उनसे पूछे कि कैसे ठीक है, बाबा उनसे पूछा बच्चे ठीक हो, बच्चे ठीक हो, तो डॉक्टर हैरान हो गया, मैं पूछूं या मेरा पेशेंट पूछे। उसको तो ज्ञान नहीं था, लेकिन कौन पूछे। एक बार बीच में जैसे हॉस्पिटल में ही तो बहुत बच्चे गए बाबा से मिलने के लिए, और बाबा मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और मतलब बड़े लाइट थे। तो डॉक्टर जब आया तो पूछता है पेशेंट कौन है, पता ही नहीं पेशेंट कौन, क्योंकि बाबा उनके साथ ही बैठे नहीं, तो पेशेंट का पता चलता है ना, अपने वो बेड पर होगा, वे ऑपरेशन किया है तो उसके बाद कैसे होगा जरूर, लेकिन कौन है पेशेंट, क्योंकि वो डॉक्टर ही भूल गया कि इतने सारे लोग बैठे हैं पेशेंट कहाँ है। और बाबा अपने हॉस्पिटल की बेड से ही बाबा पत्र लिखते थे, हॉस्पिटल की बेड से मुरली लिखते थे। कई बार बाबा की मुरली में आता है, एक्चुअल आज बच्चों को मुरली नहीं सुनाई, बाबा ने मुरली नहीं चलाया, शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती थी तो बाबा के आगे तो लेटर पैड और पेंसिल सदा होती थी, और जैसे बाबा को टचिंग आई बाबा ने पेन उठाया, पेंसिल उठाया, कागज उठाया, लिखते थे पूरी की पूरी मुरली बाबा लिखते थे, क्योंकि आज हॉस्पिटल में तो बच्चे कहेंगे कि बाबा ने आज मुरली नहीं चलाई, तो वो मुरली जाती थी हॉस्पिटल से लिखित रूप में कि शिव बाबा तो अपना काम करेंगे, ये तो माध्यम था, और बाबा शक्ति भी दे रहा है, और मुरली लिख करके सबको भेज भी थी बाबा ने। कैसे बाबा का कार्य अपने आप होता रहता था, चिंता से तो कुछ होता भी नहीं है। मान लीजिए हम चिंता करके बैठे क्या होगा कैसे होगा, अरे जो होना होगा वही होगा ना, चिंता करने से कुछ होगा क्या, या चिंता करने से बात बदल जाएगी क्या, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जो बीत गया उसकी चिंता, अब वो भी जो बीत गया वो तो हो गया, वो भी तो बदलेगा नहीं, और जो भविष्य में होना वो बदलने वाला नहीं है, जो होना होगा वही होगा, तो चिंता से तो वैसे ही कुछ फायदा नहीं है। तो चिंता कोई बात की नहीं होती है, पर चिंता होती है फिर मेरा नाम कहाँ, मेरी पोजीशन कहाँ, मेरा नाम बदनाम न हो जाए, फिर मेरा ये नुकसान न हो जाए, है सारी अपनी बात, अपनी कमजोरी, पर उस कमजोरी को फिर दूसरा नाम क्या देते हैं, चिंता। तो चिंता की कोई बात नहीं है, परंतु छोड़ो तो छूटो ये नहीं होता है, और बाबा के अंदर में था छोड़ो तो छूटो, मेरा कुछ भी नहीं है, तो इतना हल्का रहना है, तब कहेंगे बाप समान बेफिक्र बादशाह। और बाबा कई बार कहते हैं बोझ मुझे दे दो, ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा बोझ शिव बाबा को दे दिया, तो हम भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते बाबा को बोझ। बाबा जब कई बार कहते हैं मुझे यूज करो, तो कैसे यूज करेंगे, छोटा बच्चा होता है ना, कुछ उसके पास भारी चीज है, मम्मी उठाओ दे दो, मम्मी को दे दो, डैडी को दे दो, कभी भी बच्चा है बहुत तंग कर रहा है, मम्मी को बहुत तंग कर रहा है, तो मम्मी क्या करेगी, लो उठाओ पति को दे देगी, तुम संभालो। ऐसे होता है ना, बच्चा माँ को बहुत तंग कर रहा है, अब पिता के पास जाएगा तो शांत हो जाएगा, तो माँ क्या करती है, वो बच्चे को उठा के पिता को दे देगी, और पिता के पास गया तो बड़ा खुश, माँ के पास रो रहा है, तो समझती है ना कि भाई पिता संभालेगा। तो बाबा भी कहते हैं मुझे यूज करो। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा को हम क्यों चिंताएं दे दे अपने, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, वैसे ही बाबा को बहुत प्रॉब्लम्स है, तो मेरी और एक प्रॉब्लम बाबा को क्यों बढ़ जाए। तो बाबा तो सर्वशक्तिमान है ना, उसको प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम लगेगी क्या? जैसे आप बहुत सामान लेके जा रहे हैं और आप कूली कर रहे हैं, अब सामान बहुत है, कूली कहेगा लाओ लाओ लाओ, आप कहेंगे कितना उठाएगा, इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ, हाँ समझो वो रेडी नहीं है, तो क्या होगा? यहाँ भी उठाएगा, यहाँ भी उठाएगा, सिर पर भी उठाएगा, इधर भी उठाएगा, अब कहीं इतना उठाएगा, वो कहते लो लाओ लाओ लाओ, क्योंकि ताकत है ना उसमें, हमारे में कहाँ है वो फिजिकल ताकत, पर उसको मुश्किल नहीं है। तो बाबा को देने में मुश्किल क्यों लगता है? तो ये नहीं कि बाबा को क्यों देवे, लेकिन अपना अभिमान होता है मैं कर सकता हूं, फिर चिंताएं करते रहते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी सब चिंताएं शिव बाबा को दे दी, और अंत के समय कैसे बाबा न्यारे हो गए, जब ये बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद दादी प्रकाशमणि जी ने कैसे गुलजार दादी को कहा कि बाबा के पास जाओ वतन में, और बाबा से पूछ कर आओ कि अंत की स्टेज बाबा की कैसी थी, क्योंकि संदेशियां तो जो आत्मा श्री छोड़ती उनसे मिलती, तो बाबा से तो वैसे ही वो मिलती थी, वतन में मिलती थी गुलजार दादी। तो दादी जी ने उनको कहा कि बाबा से पूछो कि बाबा की अंत की स्टेज कैसी थी, क्योंकि दादी बाबा के सामने थी, बाबा के हाथ दादी के हाथ में थे, और बाबा की दृष्टि जैसे दादी जी की दृष्टि में, और उसी समय बाबा ने देह त्याग किया। तो दादी गुलजार से कहा कि आप बाबा से पूछ के आओ कि उस समय की स्थिति कैसी थी, जो बाबा कहते अंत मते सोगते, वो अंत की स्थिति कैसी थी। तो बाबा ने बहुत सुंदर मैसेज भेजा कि बच्चे जैसे ही बाबा कमरे में आए, 18 जनवरी रात का समय था, बाबा को ऐसे महसूस हुआ जैसे आत्मा जा रही, बाबा को महसूस तो हुआ, बाबा बहुत हल्के हो रहे, तो उसी समय जैसे शिव बाबा की उनको खींच हुई, शिव बाबा कह रहे हैं बच्चे अब मेरे पास आना है, मेरे पास आना है। फिर अव्यक्त वतन सूक्ष्म फरिश्ता ब्रह्मा वो भी बाबा का आह्वान कर रहा है, बच्चे मेरे पास आना है, मेरे पास आना है। तो फरिश्ता स्वरूप भी आह्वान कर रहा है, शिव बाबा भी आह्वान कर रहा है, और अंतिम हिसाब किताब जो शरीर का वो भी चुकतू हो रहा है, बाबा अशरीरी हो रहे हैं। और उसी समय जैसे बाबा ने दादी जी को भी याद किया, दादी जी को अब बाबा के कमरे में जाने का कोई संकल्प नहीं था, लेकिन अचानक दादी को ख्याल आया अभी तो केवल 9 ही बज रहे हैं, मैं बाबा के कमरे में तो जाऊं, बाबा अभी अभी कमरे में गए हैं, मैं जरा जाकर गुड नाइट करके आती हूँ, नहीं तो रोज रात के 10 बजते थे मुरली के बाद बाबा जाते थे, उस दिन सब 1 घंटा जल्दी हो गया। तो जैसे ही बाबा के कमरे में गई तो देख रही है बाबा खटिया पर बैठे हैं, आंखें बंद हैं और बिल्कुल न्यारे हो गए हैं। तब दादी ने बाबा का हाथ पकड़ा, मानो दादी जी को बाबा ने आह्वान किया संकल्प से, और कैसे दादी जी ने वो संकल्प को रीड किया और दादी बाबा के पास गई। तो मानो एक तरफ शिव बाबा खींच रहा है, दूसरी तरफ अव्यक्त ब्रह्मा फरिश्ता खींच रहा है, वो संपूर्ण स्वरूप बाबा का खींच रहा है, तीसरी ओर ये पुराना हिसाब किताब, और चौथी ओर दादी प्रकाशमणि। दादी प्रकाशमणि बॉम्बे में रहती थी, मधुबन में नहीं रहती थी, दादी तो बॉम्बे में रहती थी, और 13 तारीख को दादी जी मधुबन में आई है एक पार्टी लेकर के। बड़ी दीदी जी यहाँ रहती थी, बड़ी दीदी जी गई हुई थी इलाहाबाद, वहाँ कुंभ का मेला था, तो दीदी को बाबा ने कुंभ मेले में भेजा था। तो दादी प्रकाशमणि यहाँ थी मधुबन में, तो 17 तारीख को बाबा के पास आई छुट्टी लेने के लिए, बाबा मैं बॉम्बे जा रही हूँ, तो बाबा ने उसको रोक दिया, क्योंकि दादी बॉम्बे में रहती थी, और बॉम्बे में रह करके सारा साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो भी सेंटर्स इन स्टेट्स में थे, गुजरात से लेके महाराष्ट्र, वो सारा दादी जी देखती थी बॉम्बे से, और बड़ी दीदी मधुबन में रह करके जो नॉर्दर्न पार्ट है, राजस्थान और फिर ईस्टर्न जोन, पंजाब वगैरह, और चंद्रमणि दादी पंजाब, मतलब ये बाबा ने जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, कौन क्या संभाले। तो दीदी मधुबन में रह करके वो भी सब देखती थी और दादी जी बॉम्बे में रह करके देखती थी अपना। तो बाबा ने दादी को रोक दिया और रोक करके बाबा ने कहा कि बच्ची थोड़े दिन और रुक जाओ, दीदी आ जाएंगी फिर आप जाना। और देखो कैसे ड्रामा अनुसार दादी सामने गई और बाबा का हाथ पकड़ा, दृष्टि उस समय बाबा की मिली और एक सेकंड में आत्मा उड़ गई, हिसाब किताब पूरा हो गया। फिर बाबा ने क्या कहा कि बाबा गए नहीं है, केवल कमरा और कपड़ा बदली किया है, शरीर जो देह का ये कपड़ा ही है ना, उसको बदल के सूक्ष्म ड्रेस धारण किए, और ये संसार ये साकार दुनिया एक कमरा है, वो कमरा छोड़कर सूक्ष्म वतन का कमरा, जैसे कमरा चेंज करते हैं ना, वैसे कमरा चेंज किया और कपड़ा चेंज किया, बस बाकी तो वही है। पर संपूर्ण फरिश्ता बाप समान ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ये अब ये जोड़ी बन गई, जैसे वो होते हैं ना कंबाइन जुड़वे, एक होते हैं कि ट्विंस अलग अलग पैदा होते हैं, दूसरे होते हैं जुड़े हुए होते हैं। आजकल ये बहुत सारे न्यूज में भी आता है, वो जुड़े हैं, सिर से जुड़े हुए हैं, पीठ से जुड़े हुए हैं, पीछे से जुड़े हुए हैं, तो उनको अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को अलग नहीं कर सकते। कई बार वही बच्चे पूछते हैं शिव बाबा ने कहा या ब्रह्मा बाबा ने कहा, साकार मुरलियों में तो हम समझ सकते हैं ये शिव बाबा ने कहा या ब्रह्मा बाबा ने कहा, लेकिन अव्यक्त मुरलियों में नहीं पता चलता है, क्योंकि दोनों बाप दोनों एक समान हो गए, शिव बाबा के समान बन गए ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण बन गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई शिव बाबा बन गए ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा का पार्ट अलग है। एक बार एक विदेशी ने बहुत अच्छा एक ड्रामा बनाया था यहाँ मधुबन में कि कैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा के बच्चे सब, तो क्या हुआ तो अभी ब्रह्मा बाबा और बच्चे सब संपूर्ण हो रहे हैं, शिव बाबा अभी एक भाई दिखाया था, पर शिव बाबा का झंडा उसको लगा हुआ है, तो भाई ये शिव बाबा है वो ब्रह्मा बाबा है और वो सब बच्चे हैं। तो कैसे बाबा उनको लेके जा रहा है, लेके जा रहा है और घर में गया तो बच्चों का इतना प्यार बाबा को कि भाई बच्चों को तो सतयुग में जाना है, तो सतयुग में जाने के लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं और शिव बाबा को मैं भी जाऊं मैं भी जाऊं। तो फिर जैसे ही वो तैयार होता है ड्रामा उसको रोक लेता है ड्रामा शिव बाबा को रोक लेता है, क्यों तुम सतयुग में नहीं जा सकते हो, और बच्चे भी बच्चे चले गए, बाबा देखता ही रह गया मेरे बच्चे सतयुग की दुनिया में चले गए, बड़ा रमणीक रूप से ड्रामा बनाया था। तो ये ड्रामा का ज्ञान कहो या जो भी बाबा हमें ज्ञान देते उसको खेल खेल में हम ले रहे तो ऑटोमेटिकली हम बेफिक्र बादशाह रहेंगे, ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहो, जो कुछ हर बात में ड्रामा को कभी भूलो नहीं, लेकिन कर्म से पहले ड्रामा नहीं, कर्म पहले फिर ड्रामा। जैसे चाकू होता है ना, चाकू होता है तो चाकू एक साइड धार होती है एक साइड ब्लंट होता है, अब आपको चीज काटनी है तो जो धार वाली साइड है वो उस चीज पर रखेंगे ना, अगर उल्टा रख लिया तो क्या होगा आपकी अंगुली कटेगी, वो चीज तो कटेगी नहीं। तो अगर ड्रामा को उल्टा ले लिया तो आपको नुकसान होगा, ठीक है जो ड्रामा में होगा, कल भी बाबा ने कहा या परसों ड्रामा में होगा तो पानी अपने आप आ जाएगा मुंह में, ऐसे आएगा क्या, पीना तो पड़ेगा ना कि नहीं पीना पड़ेगा। तो बाबा ड्रामा के पट्टे पर भी पूरे थे और साथ साथ कैसे बेफिक्र बादशाह भी थे और पुरुषार्थ में भी पूरे थे, तो हमें भी पुरुषार्थ भी पूरा करना है, बेफिक्र बादशाह भी बनना है और साथ साथ बाबा से कभी अपने को अलग नहीं करना है, तो हम भी उड़ते रहेंगे और सबको उड़ाते रहेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स शिलू बहन आदरणीय शिलू दीदी ने बहुत बहुत अच्छी बाबा की वंडरफुल अनुभव की बातें सुनाई जो कईयों को नहीं पता होगी और आज उन्हों को यह मालूमियत हुई है। इनसे हमारे अंदर पुरुषार्थ में तीव्रता आती है, और वह लानी बहुत आवश्यक है समय प्रमाण। आज आपको डबल चांस मिल रहा है, करुणा भाई का क्लास रखा हुआ है 12:15 से, तो अभी आपके लिए बाबा को याद करके अभी पूरा करेंगे तो शरबत पीने आपको जाना है। परंतु उसके अंदर एक बात ये कहनी थी कि सभी डायरेक्ट वहां पर जाएं जहां कल गए थे ना, क्योंकि क्या ये डायमंड हॉल के उधर नीचे है, कल गए थे भी क्या है, डाइनिंग हॉल। तो क्या है कि अगर इधर उधर जाते हैं फिर क्या हो जाता है, दूसरी भी पार्टीज आई हुई है ना तो वो चली जाती हैं और उनको पता नहीं चलता है। तो कल भी कईयों को फिर कम पड़ गया था, तो उन्होंने खास डायरेक्शन दिया है कि सभी को बोलो सीधा पहले उधर आ जाए। तो इसलिए यहाँ से उठने के बाद आप शरबत पी करके 10 मिनट में तुरंत वापस अपने स्थान को ग्रहण करें। फिर करुणा भाई के पास मम्मा के बहुत अच्छे अनुभव हैं, उनसे हम मम्मा के अनुभव भी सुनेंगे। जून मास है, अभी 24 जून भी आ रही है, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिलेगी। ओम शांत। बहुत बहुत थैंक्स शिलू बहन को। पहले सभी बहने बैठो, पहले भाई चले जाएं, एक साथ वहां भीड़ न हो, भाई सब भले उठे, 2 मिनट बहने बैठो। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, आज बहुत बातें।